Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, दो बातें हमारे दिमाग में सदा चल रही होती हैं, एक कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा और दूसरा कि हमारा पास्ट ऐसा क्यों था। इन दोनों के बीच में हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि जिंदगी, हमारी जो सांसें चल रही हैं, वो प्रेजेंट में चल रही हैं, ना कि फ्यूचर में, ना कि पास्ट में। प्रेजेंट अपने आप में ये शब्द ही कहता है कि जिंदगी एक तोहफा है और वो तोहफा आपको प्रेजेंट में ही रहकर मिल सकता है, ना कि फ्यूचर में या कि पास्ट में। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं बीके चिन्मय भाई जी। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो।
ओम शांति, थैंक यू।
ब्रदर, हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि किस तरह से लॉ ऑफ वाइब्रेशंस ये इतना महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में। हमने जाना कि हमारी जो पॉजिटिव ऑरा होती है या फिर नेगेटिव ऑरा भी होती है, ये दोनों पूरे हमारे आसपास के वातावरण को क्रिएट करता है। इस हद तक वाइब्रेशंस हमारे जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं कि पूरे विश्व में हमारे वाइब्रेशंस फैलते हैं।
True.
और एक मुस्कुराहट जब हम दूसरे को देते हैं तो हम वो मुस्कुराहट के द्वारा अपने वाइब्रेशंस को स्प्रेड करते हैं।
Absolutely.
अब मैं जानना चाहती हूँ ब्रदर कि हमारी जो जर्नी है, जिस जर्नी में, जिसमें आप धीरे धीरे नई नई बातें बताते जा रहे हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप हमें बताना चाहते हैं जो हमें अपनी मंजिल के और करीब लेके आएगा।
फर्स्ट तो हमने लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बात की कि कैसे हमारे वाइब्रेशंस चीजें और लोगों को हमारी ओर अट्रैक्ट करते हैं।
जी।
दूसरी चीज मुझे ये जाननी चाहिए कि दूसरा लॉ है लॉ ऑफ रिलेटिविटी।
ओके।
मतलब क्या कि मैं किसी भी चीज को खुद से रिलेट करता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी बिलीफ से मैं रिलेट करता हूँ, कंपेयर करता हूँ और उसी तरह से उस चीज को समझता हूँ। राइट। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर करता हूँ तो फिर उसी तरह से मैं रिलेट करूंगा और उसी तरह से मैं बिहेव करूंगा।
ओके।
अगर मैं अपनी लाइफ को उस छोटे बच्चे के साथ कंपेयर करता हूँ जो कि अभी सीरिया में है और वो, उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानूंगा और साथ ही साथ मुझे में ये भी कुछ संकल्प आएंगे कि मैं कैसे उसकी मदद कर सकूं। राइट। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ये सोचता हूँ कि मेरी लाइफ, जैसे कोई फिल्म एक्टर के साथ कंपेयर करता हूँ कि ये एक्टर की जैसी ही मेरी लाइफ होनी चाहिए, उसके जैसा ही मेरा चार्म या मेरा पैसा होना चाहिए, मेरे स्टेटस होना चाहिए, तो मैं कहीं ना कहीं इन्फीरियर फील करूँगा।
जी।
क्योंकि जो मैं रिलेट कर रहा हूँ वो सब उसी की तरह रिलेट करता हूँ।
जी।
लेकिन यहाँ मुझे ये जानना है कि मैं कैसे अपनी लाइफ को रिलेट करूं ताकि मैं हम्बल भी रहूं पर कंप्लेसेंट ना बन जाऊं। मतलब कि मुझ में ये फीलिंग ना आ जाए कि मैं तो सबसे महान हूं। अगर मैं यही सोचता हूं कि मैं ही सबसे महान हूं और बाकी सब मुझसे इन्फीरियर है, तो मैं कंप्लेसेंट बन जाऊंगा और मैं आगे बढ़ने से अपने आप को रोकूंगा। एट द सेम टाइम, अगर मैं ये समझूं कि मैं बहुत ही अभी तो नीचे लेवल पे हूँ और मुझे ऊपर पहुँचना, बहुत लोगों, मतलब ऊपर पहुँचने में बहुत देर लगेगी, ये वो करके दूसरे जो हम मुझसे कहीं आगे हैं उनसे कांस्टेंट कंपैरिजन करता रहूँ, तो भी मैं दुखी होऊंगा और मैं कुछ करने के लिए रेडी नहीं होऊंगा। राइट। तो मुझे ये लॉ ऑफ रिलेटिविटी को समझना है और अपनी लाइफ को इस तरह से रिलेट करना है ताकि मैं हम्बल भी रहूं और कंप्लेसेंट भी ना बन जाऊं, प्रोग्रेस के लिए रेडी रहूं।
Okay.
और इसलिए द बेस्ट थिंग इज कि मैं अपने आप को अपने पास्ट से कंपेयर करूं, न कि किसी और से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूँ अपने एग्जाम में, तो पास्ट एग्जाम में मुझे कितने मिले, 75, मैं क्यों ना 85 के लिए ट्राई करूँ इस एग्जाम में, ताकि मैं अपने आप से, पिछले अपने आप से अभी का मैं बेहतर बनूं, और मैं कंप्लेसेंट भी ना बन जाऊं कि अभी तो मैं सबसे महान हूं, राइट?
ओके, पर ब्रदर जैसे हमने शुरुआत की थी इस एपिसोड की, हमने बात की थी कि पास्ट में जीना भी गलत है और फ्यूचर में भी जीना गलत है, तो आप अगर मुझे कह रहे हैं कि पास्ट देख करके मुझे अपने चीजों को सुधारना है, तो क्या ये सही है?
जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उसमें फ्रंट व्यू मिरर होता है,
यस,
और दूसरा होता है रियर व्यू मिरर,
या
राइट? फ्रंट व्यू जो विंडो होता है बहुत बड़ा होता है, तो हमारा लक्ष्य जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए और उसके ऊपर ही हमारा फोकस होना चाहिए। हाउएवर रियर व्यू मिरर छोटा होना चाहिए, जहां से हम सीख सके कि पीछे मैंने क्या किया, उसका परिणाम मुझे क्या मिला।
ओके,
तो छोटा सा अगर रियर व्यू मिरर होगा, न कि उसके लिए अफसोस करने के लिए, पर उससे सीखने के लिए कि मैंने क्या सीखा, तो मैं गाड़ी ठीक से ड्राइव कर पाऊंगा और मेरा फोकस रहेगा।
This is amazing. I think ये मेरे सवाल का सबसे अच्छा जवाब है। ब्रदर, कई बार ऐसा होता है कि जब हम खुद को देखते हैं पास्ट में, तो एक रिग्रेट होता है। मैं ये नहीं कहती कि सब चीजें गलत है, लेकिन जब हम, जैसे आप रेयर व्यू मिरर की बात कर रहे हैं, आई लव दैट कॉन्सेप्ट, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन वो मिरर भले ही छोटा क्यों ना हो, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कई बार वो रेयर व्यू मिरर हमारे जो फ्रंट व्यू मिरर होता है उसको पूरी तरह से ओवरपावर कर देता है। कई बार हम हमारे पास्ट के गुड एक्सपीरियंसेस से भी बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। जैसे सपोज एक एक्स बिजनेसमैन है जो अभी बिजनेस नहीं करते, लेकिन उनके जो एक वो ऑरा था कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं लोगों को रूल करता हूँ या लोग मेरे अंडर काम करते हैं, वो थॉट उनका इतना स्ट्रांग होता है कि जब वो घर पे रिटायर होकर भी बैठते हैं तो घर में भी वो बॉसी बिहेवियर उनका चालू रहता है। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि कई बार हम पॉजिटिव चीजों को भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि वो हमारे प्रेजेंट को स्पॉइल करता है। ऐसे में क्या किया जाए?
जब लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि अपने सिर्फ पास्ट को ही अपना अकम्प्लिशमेंट मानते हैं,
या
और फिर उसी को दोहराते रहते हैं, तो अक्सर में अंदर ही अंदर वो किसी न किसी इनसिक्योरिटी को महसूस करते हैं, इसीलिए वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को दोहराते रहते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी इनसिक्योर फील करता हूँ और फिर मैं लोगों को अपने किस्से सुनाता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका अप्रिसिएशन मुझे मिलेगा, उनका रिस्पेक्ट मुझे मिलेगा, राइट? उनका एक तरह से सिग्निफिकेंस मेरे को फील होगा, और जब वो सिग्निफिकेंस फील होता है तो वो भी एक तरह सा जैसे एडिक्शन से हो जाता है।
True.
Right? कि फिर मैं वैसे ही हर एक को, हर एक से बिहेव करता हूँ, और फिर वो मेरी रिलेशनशिप्स पे एडवर्सली इफेक्ट करता है, राइट?
Yeah.
Right? तो उस दौरान मुझे रियलाइज करना चाहिए कि मेरा फ्रंट व्यू मिरर अभी कैसे मैं बड़ा करूं, ताकि मैं और आसानी से जिंदगी को जी सकूं।
ओके,
राइट? जैसे कोई रिटायर हो जाता है तो 4 साल या 5 साल के बाद, नॉर्मली लोग जब रिटायर होते हैं तो 4 साल 5 साल के बाद वो उनका जीवन बहुत ही रूखा सूखा सा हो जाता है।
बिल्कुल,
ऐसा एक सर्वे में जाना गया है।
बिल्कुल,
राइट? एंड विद इन मैक्सिमम 10 ईयर्स जब वो मान लेते हैं कि मैं रिटायर हो गया, दैट्स इट, अभी कुछ नहीं करना मेरे को, तो विद इन 10 ईयर्स उनकी फिजिकल डेथ भी हो जाती है, राइट? क्योंकि अभी कुछ करने को ही नहीं, कुछ अचीव करने को नहीं है, और हमारा मन जो है वो एक इन अ सेंस वो एक फोकस सेंटर्ड गोल सेटिंग मशीन है।
अच्छा।
अगर आप अपने माइंड को कोई लक्ष्य नहीं देते तो धीरे धीरे रूखा सूखा सा हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे से उसका जो उपयोग है वो कम हो जाएगा, तो वो एकदम जैसे शिथिल सा हो जाएगा, राइट? तो मुझे ये रियलाइज करना है कि मैं वो कंप्लेसेंसी के कारण खुद की, अपने आप की ही तो डेथ को निमंत्रण नहीं दे रहा।
ट्रू,
राइट?
बिल्कुल,
क्योंकि कई बार ये एक तरह से बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। राइट, क्योंकि रिलेशनशिप्स में तो उनको इफेक्ट होता ही है, पर वो खुद अपने आप को भी एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, वो उनको रियलाइज करना है।
ब्रदर, अब हमने ये तो मान लिया कि लॉ ऑफ रिलेटिविटी हमें कैसे हेल्प करती है एक बेटर जिंदगी जीने में। अब मैं बात करना चाहती हूँ कि कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो पॉजिटिव थिंकिंग को भी नेगेटिवली लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है, मैं ये कभी नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन है जिंदगी को लेकर के। पर पॉजिटिव थिंकिंग की जो ये दुनिया है जहाँ पर खुशी ही खुशी है, जहाँ पर सुकून ही सुकून है, वो लोग वो कभी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें डर भी रहता है कई बार। मैं ये बोल सकती हूँ कि शायद उन्हें डर है, शायद वो इनसिक्योर्ड है अगेन, शायद उनकी पास एक्सपीरियंसेस ऐसे रह चुके हैं कि जिसके वजह से वो डरते हैं कि मुझे पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करना है या मैं कर ही नहीं सकता। ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय है?
एक एक्सलेंट एग्जाम्पल है कि जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में किसी से बात करता हूँ, कभी कभार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा।
यस,
इट नेवर वर्क्स। क्यों? क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे थे पास्ट में जब उन्होंने किसी चीज़ को बहुत ही मतलब दिल से चाहा और उसमें मेहनत भी की, थोड़ा बहुत उन्होंने सोचा, पर फिर कभी कोई ऑब्स्टिकल आने के कारण उन्होंने छोड़ दिया। और जब रिजल्ट आना था तब तक उन्होंने ये कोशिश नहीं की और छोड़ दिया, और फिर वो ऐसे मेंटली एक जैसे ऑब्स्टिकल सा बना लिया कि जब भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोचता हूँ तो मेरा काम नहीं होता।
मैं खुद भी उसकी शिकार हूँ।
एब्सोल्युटली।
क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे इस चीज को बहुत बिलीव किया था और बहुत अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश की थी और बहुत कन्विक्शन के साथ में उस चीज को चाहा मैंने, जो भी गोल था, लेकिन वो चीज़ जब पूरी नहीं होती है रेपिटेटिवली तो आप धीरे धीरे अपने दिमाग पर, जैसे आप कहते हैं ना कि एक टेबल है उसको आप पिलर देते जाते हैं, तो वो और स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था मेरा वो बिलीफ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क। आज अगर आप उस चीज़ को चेंज कर पाए तो शायद मैं फिर से उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिलीव करने लगूँ।
एग्जैक्टली, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली वर्क्स।
Okay.
क्योंकि वो एक लॉ है, इट्स अ फिजिकल लॉ, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, राइट? तो अगर मैं उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम न देना चाहूं, बट इट्स पावर ऑफ आवर थॉट्स, इट्स लॉ ऑफ वाइब्रेशन, इट इज जो भी है वो मेरे मन के विचार है। और मैं मन में सोचता हूँ, जो भी सोचता हूँ वो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल में आना ही है। जैसे मैं ये बिल्डिंग के बारे में सोच रहा हूँ, मेरा घर सुंदर मुझे बनाना है, तो मैं पहले उसको पेपर में प्लान बनाता हूँ, पर उससे पहले मैं सोचता हूँ और फिर प्लान बनाता हूँ, फिर वो बनना है, राइट? तो उसको ऐसे सिंपल तरीके से लेके जाके फिर मैं उसको प्रैक्टिकल थिंकिंग पे लेके जाके करूँ, तो वो एक पॉजिटिव थिंकिंग सा नहीं हो जाएगा, वो प्रैक्टिकल थिंकिंग सा हो जाएगा।
राइट?
पॉजिटिव थिंकिंग ऑब्वियसली समटाइम्स आप पॉजिटिव हमेशा नहीं सोच सकते। अगर आपकी जिंदगी बहुत ही कठिन परिस्थिति में है और आपने फेलियर पे फेलियर फेस किया है, तो ऑब्वियसली बहुत ही हार्ड है पॉजिटिव सोचना। हाउएवर, आप प्रैक्टिकल सोच सकते हो।
बिल्कुल,
राइट? प्रैक्टिकल क्या सोचें कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ये हुआ, बट वॉट नेक्स्ट। ऑप्टिमिस्टिक सोच सकते हो,
राइट? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमिस्ट and positive.
Exactly. Optimist जो है उसके मन में ये belief रहता है कि कुछ अच्छा हो सकता है।
जी।
Negative thinking is कि अभी तो this is the end, end of the world, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरी दुनिया खत्म हो गई, this is it. पर optimistic is this is the beginning.
True.
Right?
Yeah. I think ये बहुत ही awakening thought है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने कुछ चीज़ों को कभी महसूस नहीं किया होता है। कई बार जैसे कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का फर्स्ट टाइम तो होता ही है। तो कुछ लोगों, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शायद नज़रअंदाज किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, मैं खुद थोड़ा सा फिर से बिलीव करना शुरू करूँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ। क्यों? क्योंकि होप पे पूरी दुनिया टिकी है। ब्रदर, अब मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि रिलेटिविटी की हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर से हम कई बार इतना ज़्यादा गले लगा लेते हैं अपने आप को कि हम प्रेजेंट में जीना छोड़ देते हैं। जो मुझे लग रहा है सीक्रेट में बताया जाता है कि आप जैसा इमेजिन कर रहे हो, सपोज आप एक एयरक्राफ्ट ड्राइव कर रहे हो तो बेसिकली आप फ्यूचर में जी रहे हो। आई बी वेरी फ्रैंक कि आप प्रेजेंट को एम्ब्रेस नहीं कर रहे हो, आप फ्यूचर में जी रहे हो। तो ये किस हद तक सही है? क्योंकि मैं ये एक अपनी फ्रेंड के एक्सपीरियंस के थ्रू बोलना चाहूँगी कि जब वो फ्यूचर में ज़्यादा जीने लगी थी और उसने सीक्रेट को अप्लाई किया था तो उसे एक मेंटल डिसऑर्डर हो गया था।
Oh, really?
Yeah. और ये बहुत यंगस्टर्स फेस कर रहे हैं आज। आई थिंक मैं कहूँगी 30-40% ऑफ यंगस्टर्स जिन्होंने सीक्रेट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है वो कोई ना कोई मेंटल बीमारी से आज शिकार हो चुके हैं। और ये तब पता चलता है जब डॉक्टर आपको खुद ये बताता है, तब तक आप अपनी ड्रीम वर्ल्ड में होते हैं। तो मैं अपने ऑडियंस को उस बीमारी से बचाना चाहती हूँ। तो ऐसे में राइट वे ऑफ सीक्रेट को अप्लाई करना कैसे पॉसिबल है?
मेरे ख्याल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ दूसरा लॉ जो चलता है, जो काफ़ी सारे लोग भूल जाते हैं, वो है लॉ ऑफ एक्शन। उसको आपको एक्शन लेना है, राइट? अगर सिर्फ मैं पूरा दिन विजुलाइज करता रहूं और ऐसा सोचूं कि ऐसा होप में जीऊं कि फ्यूचर अच्छा होगा, तो वो भी एक तरह से, जैसे आपने कहा, बीमारी है।
बिल्कुल।
और वो भी एक तरह से जैसे एक एडिक्शन है। होपियम इज एन एडिक्शन, राइट? क्योंकि सिर्फ होप में जीना भी जीना नहीं है, राइट? तो ऑफकोर्स आप प्लान करो अपने फ्यूचर को, आप विजुअलाइज करो 5-10 minutes अ डे, पर आपको एक्शन तो प्रेजेंट में लेना है।
बट आई बी वेरी ऑनेस्ट, उसने ट्राई भी बहुत किया, प्रेजेंट में भी थी वो, उसने एफर्ट्स भी ले रही थी, पर ये जो ड्रीम वर्ल्ड था ऑफ फ्यूचर बिहेवियर, उसकी वजह से शी इज फेसिंग अ प्रॉब्लम। तो आई डोंट नो ये किस हद तक मैं इस चीज़ को प्रमोट करूँ हमारे सीरियल में, ये मैं नहीं जानती। आपको क्या लगता है?
सबसे पहले तो मुझे ये प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक थिंकिंग भी चाहिए मेरा।
ओके।
कि ऑफकोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ऑफकोर्स मेरा फ्यूचर है और ये मेरा ड्रीम है, राइट? दैट्स द एंड रिजल्ट। और जब तक मुझे ये नहीं मिलेगा तब तक मैं ये उसके दूसरे सारे बहुत सारे तरीके मैं अपनाऊंगी, सिर्फ एक तरीका नहीं, राइट? और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल दे गेट स्टक ऑन वन वे।
अच्छा,
तो वन वे इज नॉट द ओनली वे, आपको दूसरे भी वेज अपनाने पड़ेंगे उस चीज को पाने के लिए।
अच्छा,
फॉर एग्जाम्पल जब मुझे पायलट बनना था तो मेरे पास इतना फंड्स नहीं था, राइट? एट द टाइम माय मम वाज the only earner of the family, क्योंकि some family problems के कारण my dad was in a depression और फिर वो उनको he was not capable कि वो बाहर जाके काम कर सके।
अच्छा।
though he was not, sometimes he was not even able to खाना भी नहीं खा सकते थे, right? तो 15 years उनके जीवन की वो थे और मेरा एक dream था कि मैं pilot बनूं। तो जब मेरा ये ड्रीम मैंने अपने मम्मी के साथ शेयर किया तो उन्होंने भी कहा कि लेट्स ट्राई, कुछ कर सकते हैं। तो तब मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट या सेकंड ईयर में स्टडी कर रहा था और मैंने ये द सीक्रेट, जैसे आप कह रहे हो कि बहुत सारे लोगों ने द सीक्रेट देखा, तो मैंने भी देखा और मैंने ये सोचा कि चलो इस चीज को मैं ट्राई करके देखूं। तो मैं भी एक म्यूजिक का पीस लगा के ये सोचता था कि मैं एरोप्लेन फ्लाई कर रहा हूँ और मेरे साथ मेरा फैमिली है, राइट? और ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस उस इमोशन में चला जाता था 5 minutes a day, ओके? और फिर मैं प्लान बनाता था, स्ट्रेटजीज बनाता था कि कैसे ये पॉसिबल करूँ, क्योंकि तब मेरे घर का एसेट्स भी इतना नहीं था कि मुझे कोई लोन दे सके या कुछ, मेरी जो फंड्स जो थे वो 20 lakh रुपीज वो मिल सके, राइट? क्योंकि मम्मी की जो सैलरी थी वो तो घर के खर्चे में ही चली जाती थी और मैं और मेरे सिस्टर यहाँ वहाँ ट्यूशंस करते थे और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करते थे, राइट? सो एट द टाइम मैं हर एक बैंक में जाता था अपने सिटी के और उस बैंक मैनेजर को मैं प्रेजेंटेशन देता था कि ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा प्लान है और इसके आधार से मैं इतना पैसा बनाऊंगा और मैं आपका लोन रीपे करूंगा
जी।
पर मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या कहते थे कि आपके पास फंड्स नहीं है और आपके पास एसेट्स नहीं है इसलिए हम आपको लोन नहीं दे सकते, सॉरी। ऑलराइट, और फिर एवरीडे आके मैं दूसरे रास्ते ढूंढता था कि अभी और रास्ता क्या हो सकता है मुझे फंड्स मिलने का, और रास्ता क्या होता है मुझे हो सकता है मुझे फंड्स मिलने का। और रोज ये 5 मिनट्स विजुअलाइज करता था, राइट। तो मैं तकरीबन 2 महीना हर एक बैंक में घूमा, और हर एक बैंक मैनेजर ने कहा कि नॉट पॉसिबल। पर एक दिन सुबह मेरे मम्मी सुबह उठे और 3:45 इन द मॉर्निंग उनको ये थॉट आता है कि गो बैक टू द सेम बैंक जहाँ पे आप सबसे पहली बार गए, राइट। और हम दोनों उस बैंक में जाते हैं, वहाँ पे जो पुराना मैनेजर था वो नहीं था, कोई नया था। तो उसको मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिखाया, कि दिस इज माय प्लान, दिस इज माय गोल।
रियली ब्रदर, आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया था कि किस तरह से आप अपनी फंड्स इकट्ठा करेंगे?
हाँ, मैंने ये पूरा कैलकुलेशन लगाया था कि आई वर्क और मैं स्टडी करूंगा, मैं उसके साथ साथ काम करूंगा, उसके साथ साथ मुझे जब पायलट की जॉब मिलेगी तो मैं इतना पैसा बनाऊंगा। मैंने सब रिसर्च किया था और मैंने कहा था उनको कि मैं ये लोन रीपे कर दूंगा आपको इतने समय में।
That's impressive.
Right? Okay. तो मैंने प्लान भी बनाया था
जी.
और उनको दिखाया। तो जब उन्होंने मेरी स्टोरी सुनी तो उनको बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने 15 डेज में मेरा लोन अप्रूव कर दिया, राइट। एंड विद इन 3 मंथ्स, मोस्ट अमेजिंग थिंग इज विद इन 3 मंथ्स उस मैनेजर की अनदर ब्रांच में शिफ्ट हो गया वो।
So, आप कहना चाह रहे हैं आपके लिए ही वो मैनेजर आए थे उस बैंक में?
Exactly.
ये तो वही वाली बात हो गई।
एग्जैक्टली, एंड आई थिंक नॉट जस्ट फॉर मी, पर बहुत सारे मेरे जैसे लोग होंगे,
आई एम श्योर,
राइट,
या
जो इस चीज को प्रैक्टिकल वे में ले रहे होंगे, नॉट जस्ट विशफुल थिंकिंग कि आई विश कि एक दिन ये हो जाए मेरे जीवन में। That is wishful thinking.
Yeah.
और वो रोज बदलता रहता है, राइट। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो एक दिन हम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, एक दिन हम पायलट बनना चाहते हैं, एक दिन हम एक्टर बनना चाहते हैं, एक दिन हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं।
So true.
Right?
Yeah.
That is wishful thinking.
Yeah.
अगर वो है तो शायद नहीं होगा, पर अगर मैं कमिटेड हूँ और मेरे पास प्लान है, मेरे पास स्ट्रेटजी है और मैंने सब कुछ एक अपने प्रैक्टिकल वे में लिया है तो फिर ये पॉसिबल है।
हाउ ब्यूटिफुल। बिल्कुल ब्रदर, आज जो हमने ये लॉ ऑफ रिलेटिविटी को जाना है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आज तक मैंने तो नहीं सुनी थी और आई एम श्योर मेरी ऑडियंस के लिए भी ये बहुत नई बात है। हमने जाना कि किस तरह से प्रेजेंट में जीने वाले व्यक्ति सक्सेसफुल होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि फ्यूचर, जो सीक्रेट में बताया जाता है कि फ्यूचर में रहना इज बैड, बट हर एक चीज़ का बैलेंस होना आवश्यक है जिंदगी में।
True.
जब बैलेंस होगा तो हर चीज आपके लिए सही तरह से काम करेगी।
प्रैक्टिकल थिंकिंग,
प्रैक्टिकल थिंकिंग। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओम शांति।
यू वेलकम। ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग हमारी पूरी जिंदगी का एक पिलर है। जिस तरह से हम एक थॉट को बार बार अगर रिपीट करते हैं तो वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आज हमने जाना कि किस तरह से लॉ ऑफ रिलेटिविटी हमारी जिंदगी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने में हेल्प करता है। तो पॉजिटिव थॉट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में जो भी मंजिल आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिल जाएगी। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति।